बॉलीवुड की फिल्मों का एक अलग ही क्रेज़ होता है, लेकिन एक ख़ास चीज़ इसमें रोमांच और बढ़ा देती है। सोचिए, फिल्मों में सिर्फ दरवाजे के खुलने की आवाज़ से सिहरन पैदा हो जाती है, या फिर जूते की आवाज़ से एक अलग इफ़ेक्ट उत्पन्न होता है। इसके अलावा कभी किसी चीज़ को तोड़ने, मरोड़ने या फिर कागज़ को क्रश करने की आवाज़ का भी अपना अलग महत्व होता है। ये सब आवाज़ें फिल्म को जीवंत बना देती हैं। सोचिए, फिल्म बाहुबली के सीन्स में अगर तलवार के टकराने पर टंकार की आवाज़ ना होती, या फिर उसमें हाथी घोड़े के चलने की आवाज़ ना होती, महलों में हर वस्तु के गिरने और टकराने की आवाज़ ना होती, तो फिल्म कितनी नीरस होती। आश्चर्यजनक रूप से ये सारी आवाज़ें लोकेशन पर सीन के साथ नहीं शूट की जाती हैं, बल्कि इनको बाद में जोड़ा जाता है, एक एक सीन के अनुसार उसी से संबंधित आवाज़। इस प्रक्रिया को फोले आर्ट कहते हैं। फोले आर्टिस्ट बहुत मेहनत के साथ एक एक कदम को उसी प्रकार के जूते पहनकर चलते हैं जिससे वैसे ही आवाज़ उत्पन्न हो। उसी तरह चीज़ें गिराई जाती हैं, कुछ प्रॉप भी प्रयोग में आते हैं। कागज़ को क्रश करने की आवाज़ के लिए रील को क्रश करना, कभी रस्सी को ज़मीन पर पटकना, कभी छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करना इत्यादि, यानी मांग के अनुसार उसी प्रकार की आवाज़ को पुनः जीवित करने के लिए दैनिक रोज़मर्रा में यूज़ कर होने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल करना। जाहिर है ये सब बहुत मेहनती और थकाऊ काम है। एकाग्रता के साथ काम किया जाता है, एक एक आवाज़ का ध्यान रखा जाता है। सोचिए, तभी आप सिर्फ विलेन के जूते की आवाज़ सुनकर रोमांचित हो जाते हैं। आज आपको मिलवाते हैं मुंबई के करण अर्जुन सिंह से, जो बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध फोले आर्टिस्ट हैं। अब तक वो 4000 से अधिक फिल्मों में फोले दे चुके हैं, जिसमें लगभग सभी मशहूर फिल्में जैसे दंगल, बाहुबली, कृष्ण, टाइगर जिंदा है इत्यादि शामिल है। अभी अभी रिलीज़ हुई सूर्यवंशी फिल्म में भी उन्होंने फोले दी है। आसान नहीं है हज़ारों फिल्मों में इतना काम करना। कैसे उन्होंने ये काम शुरू किया और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, इस बारे में करण अर्जुन सिंह ने SBS को बताया।
जी बिल्कुल, ये फोली आर्ट जो होता है वो लाइव साउंड इफेक्ट होता है। समझ लीजिए कि जैसे फिल्म होती है तो फिल्म को देखकर हमको रिकॉर्डिंग रूम के अंदर परफॉर्म करना होता है सिंक में। जैसे जैसे कैरेक्टर वहां चल रहा है, हमको यहाँ स्टूडियो के अंदर उनके लिए अलग अलग प्रकार के चप्पल, जूते, सैंडल पहन के चलना होता है। फिर जो बैग वगैरह वो कैरी कर रहे हैं उसकी आवाजें होती है, दरवाजा खोला किसी ने, कुंडी खोली, सडनली लटक रही है दरवाजे पे, उसकी खड़खड़ की आवाज, वो सारे साउंड्स जो भी स्टूडियो के अंदर क्रिएट होते हैं वो उसे फोली कहते हैं। और ये फोली जो है, मैंने बचपन में ही एक्चुअली BR फिल्म, BR चोपड़ा साहब का स्टूडियो जुहू पे था, वहां पे मैं एक बार बचपन में रात में स्टूडियो के अंदर गया। उन दिनों फोली जो है वो रात में हुआ करते थे, क्योंकि दिन में डबिंग वगैरह का काम बहुत होता था। तो रात में एक फोली आर्टिस्ट थे प्रहलाद सालवी, जिन्होंने शोले के लिए भी फोली किया था, वो एक फिल्म का फोली कर रहे थे और उनको परफॉर्म करते हुए देख के मैं इतना अचंभित हो गया कि मैंने उसी वक्त ये ठान लिया कि मैं ये आर्ट करना चाहता हूँ, ये सीखना चाहता हूँ और मैं यही करूँगा आगे जाके। और मैं मतलब सौभाग्य मेरा रहा है कि मेरे पिताजी BR चोपड़ा यहीं काम करते थे, वहीं स्टाफ क्वार्टर्स में हम लोग रहते थे। तो जब भी छुट्टियां होती थी और रात का समय होता था, हम लोग कुछ वक्त बिताया करते थे। ऐसे ही करते करते मैं सीख गया और करते रहा, तो बचपन से ही मैं फॉली करने लग गया प्रोफेशनली। और मतलब 89 में तो मैंने ऐसे ADR इंजीनियर, साउंड इंजीनियर भी ज्वाइन कर लिया था BR फिल्म को। और 2003 में मैंने BR फिल्म क्विट किया, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा समय मेरा जा रहा था और मैं अपनी प्रोग्रेस, अपनी तरक्की देख रहा था आगे, तो मुझे उसके लिए वहां से निकलना पड़ा। 3-4 से मैंने फ्रीलांस किया, 2-3 और स्टूडियो बनाए लोगों के लिए, लेकिन वो उनके साथ मेरा टर्म्स वर्क नहीं किया। फिर आके 2009 में मैंने अपना स्टूडियो बनाया, जस्ट फोली। जस्ट फोली मतलब यहाँ पे सिर्फ फोली का काम होता है, हमें और कोई काम नहीं करना है। और मेरी पूरी टीम थी मेरे साथ, 2009 से लेकर 2021 है, आज भी ये गोरेगांव में, मुंबई शहर में ये स्टूडियो है और बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। तकरीबन हम लोग महीने में लगा लीजिए 20-30 पिक्चरें, सॉरी साल में 20-30 पिक्चरें करते हैं, जिसमें शॉर्ट फिल्म और ये सब डॉक्यूमेंट्रीज छोटी मोटी वो सब मैं नहीं गिन रहा हूँ। और बाकी जो हमारे लिस्टर्स हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने अभी तक 4000 फिल्में लगभग अंदाजन कर ली हैं, साउंड इफेक्ट्स, और कुछ नामचीन फिल्म में अगर आप लेना चाहें जैसे बाहुबली है, टाइगर जिंदा है, तुम्हारी सुलू है, रईस है, माय नेम इज खान है, दंगल है, ऐसी कई फिल्में हैं जो मतलब नाम भी आजकल याद नहीं है, तो इतनी सारी फिल्में हैं। तो अभी रिसेंटली मेरी भोज रिलीज हुई थी, अभी सूर्यवंशी रिलीज हुई है जो रोहित शेट्टी की बनी है, उसमें बहुत कमाल के साउंड इफेक्ट्स हैं, वो भी मैंने किए हैं।
रोजमर्रा में बहुत सी आवाज़ों को हम उतना महत्व नहीं देते हैं, जैसे घड़ी की टिक टिक, हवा का सरसराना, उठने बैठने पर कपड़ों का रगड़ना, पर्स को लेकर चलने की आवाज़, गिलास रखने की आवाज़ इत्यादि आवाज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन फिल्मों के दृश्यों में इन सारी आवाज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है, और यही सब कार्य करण अर्जुन सिंह करते हैं। कई बार इनको हीरो हीरोइन से उनके जूते तक मांगने पड़ते हैं जिससे वो वैसी ही आवाज़ निकाल पाएं। इस तरह समझिए कि फिल्म में जितने कदम हीरो चलेगा उतने ही कदम करण अर्जुन सिंह को फोले देते समय चलना पड़ेगा, एक एक कदम से तालमेल मिलाकर।
नहीं नहीं क्या होता है, हम लोग अपना ही खुद का हर फोली आर्टिस्ट का अपना एक बैंक होता है सेलिब्रिटीज का, जो जिसमें अच्छी अच्छी आवाजें होती है वो हम लोग बैंक ऐसे ही जाके हमारा एक अपना फोली प्रॉपर्टी का एक बैंक बनता है। और ये सब एक्चुअली कुछ हम लोग मार्केट से जाके खरीदते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सिनेमा की जो फिल्म में यूज हुई है वो हम लोग प्रोड्यूसर से मंगाते हैं, और उसको हम लोग देख करके डिसाइड करते हैं कि क्या कौन से एक्टर को क्या टोन देना है, क्या शूज उसने पहने हैं, वो हमको देखने मिलते हैं। तो जरूरी नहीं कि उस शूज से आवाज अच्छी आ रही हो, लेकिन वो देख के हम लोग डिसाइड करते हैं ये शूज पहना है तो ये वाला स्पोर्ट्स है तो उसको ये स्पोर्ट्स ज्यादा बेटर सूट करेगा। कई बार अच्छे शूज भी निकल आता है, जैसे सिंघम में अजय देवगन के जो शूज है उसका टोन बहुत अच्छा था, तो वो हमने उनसे मांग लिया था कि ये शूज हमको दे दीजिए। वैसे ही हुमा कुरैशी की मैंने सैंडल मांग ली थी, वो डेढ़ के जब मैंने की थी, तो क्योंकि उनका साइज भी थोड़ा सा बड़ा है पैर का तो वो हमारे पैर में आ भी गया था, तो वो हमने मांग ली थी। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग रख लेते हैं मांग के, यार ये साउंड जो है ना अच्छा है तो इसका हम लोगों को चाहिए। तो प्रोड्यूसर के वैसे भी काम करनी है, उसके बाद एक बार सब शूट खत्म हो गया तो वैसे भी वो गोडाउन में पड़ा रह के फिर फेंका जाता है, तो वो लोग दे देते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी बनती है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या उसने सूट पहना है तो उसने हील शूज है, स्पोर्ट्स शूज पहना है तो जीन्स वगैरह पहना है, स्पोर्ट्स शूज है, कहीं वुडलैंड टाइप हार्ड शूज है तो उसका एक अलग टोन है, लड़की ने फ्लैट शूज पहना है, सैंडल पहना है, बूट्स पहना है, वो सब हम लोग जब रील देखते हैं एक बार करने के पहले तो हम लोग ये सब स्पॉट कर लेते हैं कि कौन सा आर्टिस्ट ने क्या पहना है, कौन सी लड़की ने क्या पर्स कैरी किया है, कौन से लड़के ने कौन सा बैग कैरी किया है, और उसके अंदर क्या वो पेपर का मूवमेंट करता है आगे का, तो वो सब प्रॉपर्टी जो अरेंजर होते हैं हमारे असिस्टेंट वो लोग सब निकाल के स्टूडियो के अंदर रख देते हैं माइक के आमने सामने, फिर हम लोग एक एक करके वो साउंड रिकॉर्ड करते हैं।
फोली आर्ट का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इस प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो फोली आर्ट में ट्रेनिंग देता हो। ज्यादातर आर्टिस्ट वही हैं जो इस कार्य में किसी के असिस्टेंट थे और फिर अपना काम शुरू कर दिया। कुछ लोग खुद से सीख कर भी इस विधा में आ गए। हालांकि करण अर्जुन सिंह का भविष्य में जरूर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का विचार है क्योंकि वो इस फील्ड में बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध और वरिष्ठ फोले आर्टिस्ट हैं।
नए लोग अगर आना चाहते हैं तो एक्चुअली क्या है कि उनको साउंड सीखना जरूरी है। हम लोग तो क्या नसीबन रहे कि हमारे वक्त में सब बड़ी बड़ी मशीनें थी, तो उस जमाने में साउंड डिपार्टमेंट में स्टूडियो के अंदर भी एक शिफ्ट में तीन लोग रहते थे, एक रिकॉर्डिस्ट, एक असिस्टेंट, एक वूमेन, और एक अप्रेंटिस भी रहता था जो सीखने आया है, तो चार चार लोग, क्योंकि बड़े बड़े स्टूडियो होते थे, जैसे सिनेमा हॉल होता है उतना बड़ा स्टूडियो होता था, तो उसमें इतने लोग लगते थे, माइक ठीक करना है, हेडफोन ठीक करना है, एक आदमी टेप निकाल रहा है डाल रहा है, एक रिकॉर्डिंग पे बैठा है, तो उस जमाने में एक बार उसने टेप लगा लिया तो वो फ्री रहता था, तो रात में जैसे इफेक्ट हो रहे हैं तो एक रिकॉर्ड कर रहा है बाकी तीन लड़के फ्री हैं। जितने भी लोग अभी फोली आर्टिस्ट हैं वो यूजुअली सब स्टूडियो से ही रिकॉर्डिस्ट असिस्टेंट ये लोग ही सब फोली डिप में आए हुए हैं, क्योंकि फोली के लिए कोई इंस्टीट्यूट है नहीं। अभी अगर कोई नया आदमी आना चाहता है तो उसे कोई अच्छे फोली आर्टिस्ट को यू नो इंटर्नशिप में करना पड़ेगा, और हम लोग इतने बिजी हैं जो फेमस लोग हैं कि उनके पास सिखाने के लिए वक्त नहीं है, तो उसको रियली खुद ही बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा और उसको साउंड सीखना पड़ेगा। अब ये हो जाता है कि अगर उसको साउंड सीखना है तो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल वो इंस्टीट्यूट में लगाएगा, तो इंस्टीट्यूट से जब वो निकलेगा तो उसको कंप्लीट साउंड का ज्ञान देंगे वो लोग, मतलब फोली को मतलब वो सिखाते नहीं है, खाली एक एक दो सेशन वो लोग दिखाते थे कि फोली ऐसा होता है, बाकी उनको लोकेशन साउंड सिखाते हैं, रिकॉर्ड करना, नो, और फिर इफेक्ट ट्रैकलिंग वगैरह सिखाते हैं, प्री मिक्सिस सिखाते हैं, मिक्स सिखाते हैं, फाइनल साउंड कैसा आ जाता है वो सब सिखाते हैं। तो उससे आदमी खुद साउंड डिजाइनर बन के वहां से निकलता है, उसके बाद आदमी आके अपने आप को डिग्रेड क्यों करेगा फॉली सीखने के लिए, आप सोचिए। तो इसमें इसीलिए सब ज्यादातर लोग ऐसे ही आ गए हैं, असिस्टेंट किसी के रहे हैं, कोई किसी के रिलेटिव में था उसका फादर, तो उसके बेटा आ गया, उसने उसको सिखा दिया और उसको आगे, बाकी ऐसे कोई आना नहीं चाहता। हम लोगों को काफी इंक्वायरी ऐसे सोशल मीडिया में आती है कि हमें कितना है सर, हमको ले लीजिए। अरे कहाँ से ले लीजिए, हम एक स्टूडियो लेके बैठे हुए हैं। तो सर मेरा फ्यूचर में जरूर प्लान है कि मैं एक फोली इंस्टीट्यूट खोलूँ जिसमें लोगों को फोली सिखाऊं प्रोफेशनली, और फिर बाद में इंडस्ट्री में उनको काम भी मिले। है वो पाइपलाइन में है, मैं तो खुद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम भी कब तक करेंगे, है ना। हमारे बाद भी जो लोग हैं उनको भी ये ज्ञान मिलना चाहिए, तो मैं उसमें हूँ। लेकिन ये नहीं कि कोई भी फोन कर दे कि मैं कल से मुझे ले लीजिए।
अगली बार जब भी आप कोई बॉलीवुड फिल्म देखें तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब कोई ग्लास गिरता है तो उसकी आवाज जरूर करण अर्जुन सिंह ने दी होगी। लखनऊ से फैसल फरीद।